हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक क्रमांक 13 बोर्ड पर लिखा हुआ है, वहां देख सकते हैं आप। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देही नैवा कुर्वन्न कारयन्। शब्दार्थ सर्व समस्त कर्माणि कर्मों को मनसा मन से संन्यस्य त्याग कर आस्ते रहता है सुखम सुख में वसी संयमी नवद्वारे नौ द्वारों वाले पूरे नगर में देही देहवान आत्मा ना नहीं एवा निश्चय ही कुर्वन करता हुआ ना नहीं कार्यन कराता हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तात्पर्य देहधारी जीवात्मा नौ द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसीलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावना मृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार से हैं। नवद्वारे पूरे देही हंसो लेलायते बही वसी सर्वस्य लोकस्य यथावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर नौ द्वारों दो आँखें दो नथुने दो कान एक मुख गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेता सूत्र उपनिषद 3:18। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येनम् तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो आगे आ सकते हैं और भी लोग आएंगे और सब अपने मोबाइल साइलेंट या स्विच ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से जो जीवात्मा है, आत्मा है, शरीर में रहते हुए भी शरीर के कार्यों से प्रभावित नहीं होती है, है ना। तो हमने और भी पिछले श्लोकों में पढ़ा है कि किस तरह से व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार जब कार्य करता है तो उसको कोई भी कर्म फल नहीं लगता। जैसे एक कोई आर्मी का कोई व्यक्ति है, अगर सरकार के निर्देश पर सरहद पर जाता है और कुछ लोगों को मार के आता है तो उसको भारत रत्न या पद्म भूषण मिल जाता है, है ना। लेकिन अगर वही व्यक्ति नगर में आए और सिविल ड्रेस पहनकर किसी को मारे तो क्या होगा, उसको जेल मिल जाएगा। तो जब उसने सरहद पर जाकर आतंकवादियों को मारा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है, किसने ली है? सरकार ने ली है, क्योंकि वो सरकार के निर्देश पर ये कार्य कर रहा है। लेकिन अगर वो खुद की इच्छा से कि नगर में जाकर बंदूक चलाना चालू कर दे तो वो जेल चला जाएगा। तो उसी तरह से जो जीवात्मा है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है, अगर शास्त्रों के अनुसार और गुरु के निर्देशन के अनुसार कार्य करती है तो उसको कोई भी कर्म बंधन नहीं लगेगा। कर्म बंधन मतलब ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा, है ना। लेकिन अगर अपनी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर रही है तो उसको कोई ना कोई पाप और पुण्य लगेगा, जिसकी वजह से उसको फिर दोबारा नया शरीर लेना पड़ेगा। तो यहां पर भगवान बता रहे हैं नव द्वारे पूरे देही, के देही है, एक होता है देह एक होता है देही। देह मतलब शरीर और देही मतलब जो शरीर में रहता है, है ना। जिस शरीर जिसकी संपत्ति है, जिस शरीर में रहने वाला वो देही है और शरीर देह है। ये देही कहाँ रहता है? नव द्वारे पूरे, एक ऐसा नगर है जिसमें नौ द्वार है, है ना, नौ गेट है। तो अभी हम मोदी सरकार स्मार्ट सिटी बना रही है, लेकिन ये जो सिटी है जिसमें नौ द्वार हैं वो बहुत ही स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट सिटी है, और ऐसी सिटी है जो सबसे स्मार्ट व्यक्ति ने बनाई है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ये स्मार्ट सिटी बनाई है उसकी जैसे स्मार्ट सिटी कोई बनी नहीं सकती। तो आज हम देखेंगे कि उस सिटी में अलग अलग चीज़ें क्या हैं, वो जो नौ द्वार हैं वो अलग अलग, उनके अलग अलग क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो जो सिटी का गवर्नर है वो कौन है, या सिटी का जो मालिक है वो कौन है। वो सिटी नहीं है, सिटी के अंदर जो रह रहा है वो सिटी नहीं है। शहर अलग है और शहर में रहने वाला व्यक्ति अलग है, और वो व्यक्ति ऐसा है कि उसको सिटी छोड़ना भी पड़ सकता है और उसके दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, है ना। और उसका ट्रांसफर हो जाएगा, जब उसकी अवधि पूरी हो गई इस शहर में तो वो दूसरे शहर चला जाएगा, है ना। गांव भी हो सकता है, नगर भी हो सकता है। तो उसी तरह जो जीवात्मा है, आत्मा, वो जो इस शहर में रह रही है, है ना, नव द्वारे पूरे, तो उसका अवधि जब खत्म हो जाएगा तो उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा, दूसरी सिटी में जाना पड़ेगा। और भगवान ने 84 लाख तरह की सिटियां बनाई है, शहर बनाए, है ना। चेतना के अनुसार 84 लाख तरह के शहर है, तो किसी अलग अलग शहर में उसका स्थानांतरण होता रहेगा, है ना। जैसे अगर घूस खा ली तो क्या होगा, इसे रिमोट प्लेस में किसी गांव में भेज दिया जाएगा। तो पाप किए तो क्या होगा, निम्न योनि में चला जाएगा, अच्छा कार्य किया तो स्वर्ग चला जाएगा। तो इस तरह से जो शहर है और शरीर है वो बदलते रहते हैं। तो पहले इस चीज को समझना कि हम ये शहर नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम शहर में रहने वाले एक व्यक्ति हैं या एक शरीर में रहने वाले जीवात्मा है, तो उसको समझना बहुत आसान है। कॉमन, एक साधारण तर्क से समझ सकते हैं, कॉमन लॉजिक से समझ सकते हैं कि अभी सभी लोग जगे हुए हैं, है ना। अपेक्षित आशा की जाती है कि सब जगे हैं, कोई सो तो नहीं रहा है ना, तो सब जगे हुए हैं। तो कैसे पता चल रहा है जगे हैं, किस तरह से पता चल रहा है कि हम जगे हुए हैं? क्योंकि हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं कुछ क्रिया कर रही हैं, आंखों से हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, या गर्मी बहुत है तो पंखा चला रहे हैं, तो हमारी इंद्रियां जो है सक्रिय है, शरीर सक्रिय है। लेकिन जब हम सोने जाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, दो तीन स्टेज होती है शरीर की, एक होती है जागृत, एक होती है सुसुप्त, एक होती है स्वप्न। तो शरीर की ये तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त। तो अभी हम सब जागृत अवस्था में है ना, तो जागृत अवस्था में है क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं सब क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है। जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो क्या होता है, अभी हम सो गए हैं, बिस्तर पर सो गए हैं, कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर रही, हमारी आंख काम नहीं कर रही है, कान काम नहीं कर रहे हैं, शरीर का कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वप्न देख रहे हैं और ऐसा कुछ भयानक स्वप्न आया है ना, कि कोई शेर हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना, कुछ भी ऐसा डरावना स्वप्न आया, तो वो स्वप्न कौन देख रहा है, इंद्रियां तो हमारी क्या है, सब सो गई हैं, कुछ कार्य नहीं कर रही हैं, तो वो स्वप्न कौन देख रहा है, कौन देखता है स्वप्न, बुद्धि। बुद्धि का कार्य तो अच्छे बुरे में विभेद करना है, डिस्क्रिमिनेशन। बुद्धि नहीं देखती है, मन देखता है, क्योंकि मन में क्या होती है, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मन में बहुत जो संस्कार हम बोलते हैं है ना, तो पिछले जन्म के बहुत सारे संस्कार और इस जन्म में संस्कार, मतलब ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूरी हो गई हैं जिनको हमको दोबारा पूरा करना है, या ऐसी इच्छाएं जो हमारी पूरी नहीं हुई, तो वो जो पूरी हुई इच्छाएं और जो पूरी नहीं है, वो सारी इच्छाएं मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, अचेतन मन बनाते हैं। तो मन के दो भाग होते हैं, एक चेतन मन और एक अचेतन मन। तो जो चेतन मन होता है वो हमको दिखाई देता है ना, दिखाई देता है मतलब हमको पता है, हम जैसे सोच रहे हैं कि प्रोग्राम के बाद प्रसाद होगा, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है ना, तो ये पता है। लेकिन जो अचेतन मन है, अचेतन मन में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमको खुद नहीं पता है। जैसे हम यहां मंदिर से बाहर निकलेंगे और कुछ ऐसा बिल बोर्ड देखेंगे या कुछ खाने की चीज देखेंगे, तो वो तुरंत इच्छा आ जाएगी कि ये मुझे खाना है या ये प्राप्त करना है। अभी वो इच्छा हमें पता नहीं था कि वो इच्छा हमारे अंदर है, लेकिन जब हमने वो देखा तो तुरंत वो इच्छा बाहर आ गई। जैसे एक तालाब है और बहुत ही शांत तालाब है, और उसमें से सबसे नीचे से क्या होता है, एक बुलबुला निकलता है, और जैसे बुलबुला नीचे ऊपर आता है तो पूरी जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसको पूरा डिस्टर्ब कर देता है। तो कुछ समय पहले तालाब का जो पानी था पूरी तरह से शांत दिख रहा था, लेकिन कुछ ही क्षण में क्या हुआ, एक बुलबुला निकला और डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसे ही हम शांत हैं है ना, जीवन अच्छी तरह चल रहा है, और एकदम से कोई ऐसी इच्छा आती है कि पूरा विचलन, जीवन पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं। तो विचलन बाहर से नहीं आया, वो एक्चुअली हमारे अंदर वो इच्छा दबी हुई थी अचेतन मन में। तो जो स्वप्न होता है, उस स्वप्न क्या होते हैं कि जो परमात्मा हमें अचेतन इच्छाओं को दिखाते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि किसी की हिल स्टेशन पर जाकर घूमने की इच्छा है ना, शिमला जाने की इच्छा है, और किसी को सोने खरीदने की बहुत इच्छा है, तो उसको सपने में सोने का पर्वत दिखाई देगा। तो बहुत सारी इच्छाएं क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। स्वप्न में देखा होगा कि स्वप्न ऐसा कुछ ऊट पटांग जैसा होता है, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। तो हमारी बहुत सारी जो इच्छाएं होती हैं वो भगवान मिक्स करके हमको दिखाते हैं। तो स्वप्न जब हम देखते हैं और जब एकदम से हम उठते हैं तो अभी लगता है कि हाँ ठीक है, अभी जो डरावना स्वप्न वो खत्म हो गया। तो स्वप्न कौन देखता है, मन देखता है। लेकिन जब हम जिस दिन गहरी नींद में सोते हैं, जिस दिन हमको स्वप्न भी नहीं आते हैं, और जब उठते हैं तो हम बोलते हैं आज तो कोई भी सपना नहीं आया, आज तो बहुत गहरी नींद आई, तो वो किसको पता चला, किसको गहरी नींद आई। अभी हमारा मन भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि मन क्या है, मन में इच्छाएं हैं और इच्छाओं से स्वप्न बन रहा है। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हमें आज बहुत गहरी नींद आई है, तो ये आभास किसको हुआ, ना तो मन कार्य कर रहा है, ना इंद्रियां काम कर रही, तो कौन काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो किसको पता चला कि बहुत गहरी नींद आई, और किसको किसको पता चला कि आज स्वप्न आए, तो किसको पता चल गया कि आज तो मुझे बहुत अच्छी गहरी नींद आई, तो वो कौन है? आत्मा। तो ये एक साधारण तर्क से हम समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है ना। अगर ये तीन अवस्थाएं हमको पता है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्त, ये तीन भागवतम के 11वें स्कंद में आता है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि अगर किसी को ये तीन अवस्थाओं का ज्ञान है अच्छी तरह से, तो आत्मा और शरीर के अंदर भेद समझ सकता है। तो एक साधारण तर्क से हम समझ सकते हैं। और दूसरे और क्या प्रमाण है आत्मा के, कि एक साधारण जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अधिकतर भाषा में क्या बोलते हैं, चले गए है ना, गुजर गए, गुजरी गयो, चली गयो, कहाँ कहाँ चल गुजर गए, कहाँ चले गए। अगर वो कहीं वो शरीर ही सब कुछ था तो वो कहाँ चले गए, कहाँ गुजर गए। तो साधारण जो बोलचाल है उससे भी हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति था, हम प्रेम करते हैं शरीर से है ना, प्रभुपाद समझाते हैं कि पूरे जीवन भर हमने शरीर से प्रेम किया, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो चीज है आत्मा, उससे प्रेम नहीं किया। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है तो लोग क्या बोलते हैं कि शरीर को जल्दी से जल्दी जला दो, रात भर भी नहीं रखते हैं। जिस शरीर के साथ 30, 40, 50 साल रहे उससे उतना प्रेम था, अगर वास्तव में इतना ही प्रेम था तो जब मृत्यु हुई तो उसको अच्छी तरह से सजा के, अभी तो वो कोल्ड स्टोरेज भी आते हैं, फ्रिज में रखते हैं लंबे समय तक, तो वो रख सकते हैं। लेकिन वो वास्तव में वो प्रेम करने वाली जो वस्तु है वो कौन है? आत्मा। लेकिन आत्मा से प्रेम नहीं किया, शरीर से प्रेम किया। तो ये एक साधारण बोलचाल में हम समझ सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है। और क्या प्रमाण है आत्मा के, जैसे विज्ञान में बताया गया है कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं वो 7 साल के अंदर सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, है ना। जैसे हम स्नान करते हैं तो शरीर की त्वचा की जो कोशिकाएं हैं वो चेंज हो जाती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो जो आहार नाल होती है उसकी जो कितनी कोशिकाएं होती हैं वो सब टूट जाती हैं, है ना। तो मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबे समय तक चलती है, उसकी आयु है 7 साल। तो मस्तिष्क की कोशिकाएं भी 7 साल के अंदर पूरी चेंज हो जाती हैं। हमारी जो खून में कुछ कोशिकाएं होती हैं जो ऑक्सीजन ले जाती हैं वो 120 दिन में चेंज हो जाती है। तो पूरा शरीर 7 साल में चेंज हो गया, लेकिन हमारी अनुभूतियां वही हैं। बचपन की अगर हम फोटो देखेंगे तो हमको याद आएगा कि बचपन में हमने ये किया था। तो अभी लोग बोलते हैं कि जितनी भी स्मरण शक्ति है वो ब्रेन में जाके स्टोर हो जाती है, जितनी भी स्मरण शक्ति है हमारी ब्रेन में स्टोर होती है। लेकिन 7 साल के अंदर आपका पूरा ब्रेन भी चेंज हो गया तो स्मरण शक्ति अभी भी कैसे है, वो कहाँ से आ गई? तो ये वैज्ञानिक भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि 7 साल में हमारा पूरा शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन जो 7 साल पहले हमारी जो मेमोरीज थी वो कहाँ स्टोर हुई जब पूरा ब्रेन चेंज हो गया, है ना। तो वो जो आत्मा है और आत्मा के ऊपर जो आवरण है वो उसमें इच्छाएं होती हैं वो संचित होती जाती है। तो इससे हम समझ सकते हैं आत्मा होती। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, है ना। और कोमा में अलग अलग तरह के कोमा होते हैं, किसी में ब्रेन डेथ हो जाती है, किसी में हार्ट फेलियर हो जाता है, किसी में लंग्स काम नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिसमें ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं, हार्ट भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्ति जिंदा है। जैसे हम बोलते हैं कि कौन जीवित है कौन मृत है, उसकी क्या परिभाषा है, तो लोग बोलते हैं जिसका हृदय काम कर रहा है वो जीवित है, जिसमें हृदय नहीं है, हृदय काम करना बंद कर दिया तो वो मृत है। लेकिन ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें हृदय भी काम नहीं कर रहा है, लंग्स भी काम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन भी काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ, मतलब वो मृत घोषित कर दिया है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका पल्स चलता रहता है, इसीलिए उसको ऐसे आईसीयू में थोड़ी देर रखते हैं। तो अभी तीनों चीजें काम नहीं कर रही हैं जो शरीर को टिकाने के लिए आवश्यक है। तो उसके अंदर क्या है जिसकी वजह से अभी भी जीवित है? नाक के पास अगर थोड़ा सा रुई ले जाएंगे तो रुई क्या होगी, थोड़ी सी हिलेगी, मतलब अभी भी वो श्वास ले रहा है, लेकिन तीन चीजें अभी भी काम नहीं कर रही। तो वो क्या है जिसकी वजह से अभी भी वो जीवित है? वो है आत्मा। वो आत्मा नहीं बोलते, वो उसको और कुछ ऐसा नाम देते हैं जो सुनने में अच्छा लगता है। बोलते हैं हाँ देखो कितने पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहे हैं। लेकिन वो आत्मा है जो हमारे शास्त्रों में बहुत सृष्टि के प्रारंभ से बताया गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कई उदाहरणों से कि आत्मा का अस्तित्व होता है ना। तो ये तो एक साधारण तर्क हुआ या विज्ञान से हमने समझा। तो ये स्वप्न, जागृत और सुसुप्ति है ना, और दूसरा कोमा, और मरने के बाद जब हम बोलते हैं कि वो चला गया है ना। तो ये इन तीन चार उदाहरणों से आप किसी को भी बता सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व होता है। लेकिन अभी हम शास्त्रों से देखेंगे, जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यते। तो जो आत्मा होती है कौमारावस्था, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था से उसको चेंज करके फिर नया शरीर धारण करती है। वांसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपणानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जिस तरह से पुराने वस्त्रों को त्याग कर व्यक्ति नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह से जो आत्मा है पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण करती है। और ऐसे भगवान बहुत साधारण श्लोकों में बता रहे हैं कि आत्मा का अस्तित्व है ना। लेकिन हमारी जो पूरी सभ्यता है वो किस पर आधारित है कि शरीर को अधिक से अधिक आराम से कैसे रखा जाए है ना, या अगर और सूक्ष्मता से जाएंगे तो मन को कैसे अच्छी तरह से आराम से रखा जाए, ये हमारी सभ्यता। लेकिन वास्तव में हम कौन है? आत्मा। जैसे मान लीजिए किसी का घर है, डुप्लेक्स है या फ्लैट है, तो अच्छी पुताई करवा रहा है, अच्छा कलर करवा रहा है, अच्छा उसमें सब खिड़कियां हैं, सब अच्छी तरह करा रहा है, लेकिन वो रहने वाला है वो खाना ही नहीं खा रहा है। पूरा जो घर है उसको अच्छी तरह से पूरा डेकोरेशन करवा रहा है, पूरी मरम्मत करा रहा है, लेकिन रहने वाला जो है वो खा नहीं रहा है, पूरा दीवारों में लगा रहे हैं, घर में लगा रहा है। तो वैसी हमारी स्थिति कि हमको ये जो मनुष्य देह है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है ना, क्योंकि यही एक देह है जिसमें हम इस चीज को निर्णय ले सकते हैं कि हमको भक्ति करना है कि नहीं करना है ना। मान लीजिए किसी के पास चंदन की लकड़ी है और चंदन की लकड़ी का उपयोग कर रहा है वो किसमें? खाना बनाने में। अभी चंदन की लकड़ी इतनी महंगी आती है, उसका उपयोग किया हमने खाना बनाने के लिए, तो कोई भी दूसरी लकड़ी उपयोग कर सकते हैं है ना। तो उसी तरह जो इंद्रिय तृप्ति करना है या एंजॉय करना है, भोग करना है, वो तो बाकी योनियों में उपलब्ध है बहुत अच्छी तरह से। मनुष्य योनि में इतनी अच्छी तरह से हम भोग भी नहीं कर सकते। अगर हमको खाना है कितना खाएंगे? 6 रोटी 10 रोटी 12 रोटी 14 रोटी, उससे ज्यादा नहीं खा पाएंगे। खाने की बहुत इच्छा है तो अगले जन्म में हाथी बना देंगे, खाओ जितना खाना उतना खाओ। उड़ने की इच्छा है, बहुत सारे लोग उड़ते हैं है ना, पैराशूट से प्लेन में जाएंगे फिर उड़ेंगे, तो उड़ने की इच्छा है, ठीक है पक्षी बन जाओ, जितना उड़ना है जीवन भर उड़ते रहना। तो ये मनुष्य जो देह है वो भोग करने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भोग भी क्या है, हमारी शरीर के द्वारा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन अगर आपको भोग करना है तो वैसे बहुत सारी होनी, कई लोग बहुत दौड़ते हैं है ना, दौड़ लगाएंगे, ओलंपिक में जाएंगे है ना, अलग अलग जगह गोल्ड मेडल लेके आएंगे, तो अगले जन्म में चीता बन जाएंगे, दौड़ो जितना दौड़ना है। कोई वेट लिफ्टिंग वाले होंगे और उनको बोला जाता है हाँ ये तो भारत रत्न है, भारत के रत्न, उनको मेडल दिया जाएगा। लेकिन क्या है, अगले जन्म में वो दौड़ेंगे जंगल में दौड़ेंगे, उससे तेज दौड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम भौतिक उपलब्धियों के लिए भाग रहे हैं या भौतिक भोग के लिए भाग रहे हैं तो वो पशु योनि में जाना अच्छी तरह से उपलब्ध है, वो और अच्छी तरह से हमको उपलब्ध है। तो जिसके लिए वो चंदन की लकड़ी बनी है उसके लिए उपयोग किया जाए ना, वो भोगने के लिए उपयोग नहीं किया जाए। तो इस तरह से शास्त्रों में आत्मा के बारे में बताए। तो अभी जो शिल्प बताते हैं कि हमारी जो सिविलाइजेशन क्या है, सोल किलिंग सिविलाइजेशन, जो आत्मा को मारने वाली है ना। आज कितनी जगह, कितने टीचर्स हैं, कितने प्रोफेसर्स, कहां पढ़ाया जाता है कि आत्मा के बारे में चिंतन करना है, आत्मा के बारे में सोचना है? आत्मा शब्द सुनते ही हमें ऐसा लगता है ये तो धर्म की बात हो रही है, ये तो भगवद गीता की बात हो रही है। हम तो 21वीं सदी में है, विज्ञान की विज्ञान सबसे आगे है, उसके अनुसार हम चलेंगे। लेकिन विज्ञान स्वयं ही बोल रहा है, शास्त्र स्वयं बोल रहा है कि आत्मा है। तो सबसे पहले हमें इस चीज पे आना है, ये समझना है तर्क से, शास्त्रों से और विज्ञान से कि हम शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। हम देह नहीं है, देही है। हम घर नहीं है, घर में रहने वाले एक व्यक्ति है, है ना। तो घर की मरम्मत करना है, कितना करना है? जितना व्यक्ति अच्छी तरह से रह सके। तो शरीर का देखभाल उतना करना है जिससे वो आत्मा का जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो फुलफिल हो जाए। तो इसके बारे में भागवत में दो वृत्तांत आते हैं, तो हम दोनों वृत्तांत देखेंगे आज। तो पहला वृत्तांत आता है चित्रकेतु महाराज का, है ना, राजा चित्रकेतु। तो उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे जो आत्मा है अलग अलग शरीर में देहांतरण करती है, और आत्मा के वास्तविक सगे संबंधी कौन है। तो ये भागवतम के छठे स्कंद में चित्रकेतु महाराज की कथा है, जिसमें बताया कि एक चित्रकेतु महाराज की कई रानियां होती हैं, है ना, बहुत सारी रानियां होती हैं, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं होता। तो बहुत ही दुखी रहते हैं कि मेरे आगे वंश को चलाने वाला कोई है नहीं। तो बहुत ही, मतलब उनके पास सब कुछ है ना, राज्य है, सुख संपत्ति है, भौतिक संसाधन है, लेकिन दुखी है क्योंकि पुत्र नहीं है। तो वहां पर नारद मुनि और अंगिरा मुनि आते हैं। पहले अंगिरा मुनि आते हैं केवल, और अंगिरा मुनि समझाने का प्रयास करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि इससे मुझे सुख प्राप्त होगा, उससे सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता, बोलते हैं कि आप तो मेरी जो इच्छा है इसको पूरा कर दीजिए। वो क्या इच्छा है? बोले पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो बोलते हैं कि आप एक यज्ञ कीजिए, और यज्ञ का जो बाद में जो प्रसाद होगा वो आप किसी अपनी रानी को वो दे दीजिएगा, उसको पुत्र हो जाएगा। तो वैसा करते हैं, तो उनकी जो पहली रानी होती है कृतिदूति, कृतिदूति को वो जो प्रसाद होता है यज्ञ का वो दे देते हैं। तो वो बाद में वो गर्भ धारण करती हैं, और बाद में उनको पुत्र प्राप्त होता है, और पुत्र का नाम होता है हर्ष शोक। क्योंकि अंगिरा मुनि ने क्या बोला था कि ये आपके जो पुत्र है आपके हर्ष का भी कारण होगा और शोक का भी कारण होगा, दोनों का कारण होगा। तो वो सोचते हैं चित्रकेतु महाराज, हर्ष का कारण इसीलिए है क्योंकि इतने समय के बाद पुत्र प्राप्त हुआ है, तो हर्ष का कारण है। और जब इसको राज्य मिलेगा, क्योंकि एक ही पुत्र है, तो हो सकता है थोड़ा सा इसको अहंकार आ जाए या मेरी बात नहीं सुने, इसीलिए हो सकता है मेरे शोक का कारण है। तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बोलो पुत्र प्राप्त होगा और ये मेरे हर्ष का कारण होगा। तो बाद में क्या हुआ, जो कृतिदूति है उनको पुत्र हुआ हर्ष शोक, और जो राजा का पूरा ध्यान है अपनी बाकी रानियों से हटकर पूरा पूरी तरह से कृतिदूति के ऊपर हो गया। तो जो बाकी रानियां हैं उनमें क्या आ गया, जो कृतिदूति है उनके प्रति द्वेष की भावना आ गई। तो ये भौतिक जगत में कॉमन है, है ना। अगर किसी को ज्यादा सुख प्राप्त होता है या भौतिक रूप से कोई प्रगति करता है, इवन भक्ति के ही फील्ड में हम देखें कोई आगे बढ़ता है, तो बाकी लोगों क्या होता है उससे द्वेष होता है, ये बहुत ही कॉमन है। तो जैसे ही वो पूरा राजा का ध्यान वो कृतिदूति के ऊपर आता है, तो रानी प्रयास करती है कि कैसे राजा का जो ध्यान हमारे ऊपर भी आए। तो वो जो राजा के सुख का कारण कौन है, उनका पुत्र है। तो रानियां सोचते हैं कि ये जो पुत्र है इसको हम जहर दे देते हैं, खाने में जहर मिला देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो वैसे ही करते हैं, जहर में खाना मिला दे, खाने में जहर मिला देते हैं, और पुत्र वो जहर वो खाना खाता है और उस पुत्र की मृत्यु हो जाती। तो वहाँ पर उस जो हर्ष शोक है उसके कमरे में एक नर्स थी, धात्री, तो वो उसकी देखभाल करती थी। तो नर्स जब देखती है कि उसके आँख में कुछ हलचल नहीं हो रही है या नाक से बिल्कुल सांस नहीं आ रही है, तो वो बिल्कुल परेशान हो जाती और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और फिर वो कृतिदूति है उनको बुलाती कि ये क्या हो गया, उस हर्ष शोक की मृत्यु हो गई है, है ना। तो वो जो रानी होती है वो भी पूरी तरह से पूरी परेशान हो जाती और रोते 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 पूरी तरह से पागल हो जाती, है ना। और फिर ये समाचार पूरे राज्य में फैल जाता है कि जो राजा के पुत्र हैं हर्ष शोक, उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा तक ये पहुँचता है तो राजा तो पूरे परेशान हो जाते हैं पूरी तरह से, है ना। कितने वर्षों के पश्चात उनको पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र कुछ समय के बाद कुछ सालों के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। तो वो जो राजा हैं बहुत ही शोक करते हैं और इतना शोक करते हैं कि वो राज करना ही छोड़ देते हैं, अपना राज ही नहीं कर रहे, कुछ नहीं, खा भी नहीं रहे, सो भी नहीं रहे, बस रो ही आ रहे हैं। तो वो बाद में वो पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए सब लोग बैठते हैं और उसी समय फिर नारद मुनि और अंगिरा मुनि फिर से आते हैं। अब इस बार नारद मुनि भी साथ में आते हैं, अंगिरा मुनि, और वो चित्रकेतु महाराज बोलते हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों पुत्र दिया जिसकी इतनी जल्दी मृत्यु हो गई, ना अभी कितना मैं परेशान हूँ। तो अंगिरा मुनि बोलते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपका जो पुत्र होगा हर्ष और शोक दोनों का कारण होगा, आपने उस समय सुना नहीं। बोले नहीं, आप इसको दोबारा जीवित कीजिए, इसको आप दोबारा जीवित कीजिए और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, है ना। तैसे वो तो अंगिरा मुनि बोलते हैं ठीक है, मैं इसको जीवित करता हूँ, फिर आप इसके साथ बातचीत कीजिएगा क्या बोलते हैं। तो अंगिरा मुनि क्या करते हैं, पुत्र को वो हर्ष शोक को ऐसे खड़ा कर देते हैं। अब वो हर्ष शोक जो है उसके अंदर जो जीवात्मा थी, उस शरीर के अंदर जो जीवात्मा थी वो दूसरी जगह से, मतलब जहाँ वो गई थी, तो वो जीवात्मा फिर से वापस आ जाती है और वो जो पुत्र है वो खड़ा हो जाता है। तो उनकी माँ है वो बोलती है कि बेटा कहाँ चले गए थे, इतने घंटे से कहाँ पर थे, देखो मैंने तुम्हारे लिए बना के रखा है, है ना, चलो तुम स्नान कर लो और तुम्हारे लिए खाने के लिए बना के रखा। पुत्र ने और राजा ने बोला कि कहाँ गए थे तुम, है ना, मैं इतना परेशान हो गया था, चलो अभी तैयार हो जाओ, हम दोनों सब मिलके भोजन करेंगे। तो फिर वो जीवात्मा है वो बोल, फिर वो बोलना प्रारंभ करती है और जीवात्मा बोलती है, वो जो जीव होता है वो हर शोक के अंदर बोलता है कि जैसे रेत के कण कुछ समय के लिए एक दूसरे के पास आते हैं और जैसी समुद्र की लहर आती है तो वो रेत के कण क्या होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। तो हमारा जो पारिवारिक संबंध है वो कैसा है, वो रेत के कण का अपने नज़दीक आना, थोड़े समय के लिए नज़दीक आना और फिर चले जाना, तो हमारा कोई नित्य संबंध नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि मैं देवी देवता की योनि में था तो वहाँ भी मेरे माता पिता थे, जब मैं पशु योनि में था तो मैं वहाँ भी मेरे माता पिता थे, जब मैं वृक्ष की योनि में था वहाँ भी मेरे माता पिता थे। तो आप कौन से जन्म के माता पिता हैं वो बताइएगा, आप किस जन्म के माता पिता हैं, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, पूरे इस ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में जा रहा हूँ, अलग अलग योनियों में भ्रमण कर रहा हूँ, तो आप कौन से जन्म के माता पिता हैं मेरे। तो जैसे ही वो सुनते हैं चित्रकेतु महाराज, तो तुरंत वो आश्चर्यचकित होते हैं। तो वहाँ से उनका वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार, वहाँ से उनका प्रारंभ होता है। और बताते हैं कि वो जो हर्ष शोक है जीव, बताते हैं कि हम सब वास्तव में कृष्ण की संतान है ना, और ये पूरा जो जीवन है वो कैसा है, जिसको भगवान भगवद गीता में बोलते हैं देह यात्रा, ये शरीर यात्रा है ना, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत, शरीर यात्रा अपि, शरीर यात्रा, शरीर में यात्रा चल रही है, यात्रा केवल ट्रेन या बस से नहीं होती है, इस आत्मा की यात्रा कहाँ चल रही है, इस शरीर के अंदर चल रही है ना। तो यात्रा अगर बहुत लंबा हम ट्रेवलिंग करेंगे तो क्या इच्छा होती है कि अभी ट्रेन से उतरो, बस से उतरो, घर वापस जाओ, हमेशा यात्रा करने की इच्छा नहीं होती कि हमेशा हम घूमते रहें ट्रेन में या हमेशा बस में घूमते रहें। तो इसी तरह जो जीवात्मा है उसकी इच्छा नहीं है कि इस शरीर में यात्रा करते रहे, कभी इस शरीर में यात्रा करे, कभी दूसरे शरीर में यात्रा करे, फिर तीसरे शरीर में यात्रा करे, क्योंकि यात्रा कभी कभी यात्रा में क्या होता है, चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी होती हैं, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो ये शरीर यात्रा भी वास्तव में आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए क्या है कि शरीर यात्रा से निकल कर अपना जो वास्तविक घर है वैकुंठ, गोलोक वृंदावन, वहाँ पहुँचना है। लेकिन हम इस शरीर यात्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, हमें लगता है कि शरीर के अंदर रहकर रहना ही यही वास्तविक जीवन है, उसके अलावा कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, है ना। तो जैसे ट्रेन में यात्रा होती है तो वो हर्ष शोक समझाते हैं कि जैसे ट्रेन नहीं, वहाँ पर एक गाड़ी का वो उदाहरण देते हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं, जैसे ट्रेन में एक कूपा होता है, उसमें 8 लोग बैठते हैं, और अगर यात्रा 1.5 दिन का या 2 दिन या 2.5 दिन का है तो उन 8 लोगों के बीच में बहुत गहरा संबंध बन जाता है। लेकिन जैसे ही अलग अलग लोगों का अलग अलग समय पर स्टेशन आता है तो अपने अपने स्टेशन चले जाते हैं और फिर दोबारा उनका मिलना नहीं होता है, वो अपने घर चला गया, ये अपने घर चला गया, वो अपने घर चला गया। तो उसी तरह जो पारिवारिक संबंध है वो भी कैसे है, एक यात्रा चल रही ट्रेन, वो यात्रा है 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की, मैक्सिमम 60-70 साल की है। तो जिसका जब स्टेशन आ जाएगा वो अपने स्टेशन उतर जाएगा, अपने घर चला जाएगा। फिर वो जो यात्री है कभी भी बाकी यात्रियों को याद नहीं करेगा, कभी भी स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि उसका शरीर अभी क्या है, चेंज हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। तो इस तरह से जो पारिवारिक संबंध है वो भी क्या है, बहुत ही कुछ क्षण के लिए है। लेकिन वो ही क्या है, उसी को हम, क्योंकि शरीर को अपना मान रहे हैं तो शरीर से जुड़े हुए लोगों को भी अपना मान रहे हैं, तो वो यात्रा ही हमको वास्तविक लगती है और यात्रा में मिले हुए लोग ही हमको वास्तविक अपने संबंधी लगते हैं। फिर वो बताते हैं हर्षोक कि जैसे एक व्यापारी है, सोने का व्यापारी है, सोने की खरीदता है बेचता है, खरीदेगा बेचेगा। तो एक व्यापारी ने सोना बेच दिया दूसरे व्यापारी को, फिर दूसरे व्यापारी ने तीसरे को बेच दिया, तो एक ही सोना है वो अलग अलग व्यापारी के पास जा रहा है। उसी तरह जीवात्मा होती है वो अलग अलग शरीर में ऐसे घूमती रहती है, पहले इस घर में होती है, फिर दूसरे घर में होती है, फिर तीसरे घर में होती है, अलग योनि में होती है, इस योनि में होती है। तो इस तरह से उसका जो यात्रा चलती रहती है। फिर हर श्लोक बताते हैं कि सबसे सभी योनियों में घूमने के पश्चात जो हमारे जो सबसे दुर्लभ ना, सबसे जो दुर्लभ जो माता पिता है वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो दुर्लभ पिता कौन है, आध्यात्मिक गुरु। तो सभी योनियों में अलग अलग जो माता पिता है उनका पेयर मिलता है, लेकिन बहुत ही कम योनियों में, केवल मनुष्य योनि में ही जो हमको सबसे दुर्लभ हमारे जो पिता हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो उनकी हमको शरण मिल पाती है। तो अगर आध्यात्मिक गुरु की शरण मिली है तो तब हमारा वास्तव में भाग्य चालू होता है, अदरवाइज सभी योनियों में एक जैसे ही, कुछ पुनः पुनः चर्वित चरमणा नाम, चबाए हुए को चबाए रहे, है ना। तो वास्तव में जब हमारा जीवन चालू होता है जब हमें आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। तो इस तरह से जब जो हर्ष शोक है अपने माता पिता को ये समझाते हैं तो उनको पूरी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और उनका जो शोक था, जो व्याकुल थे, वो व्याकुलता खत्म हो जाती। और फिर नारद मुनि के आदेश पर चित्रकेतु महाराज शंकरषण, भगवान शंकरषण का ध्यान करते हैं और फिर भागवतम में पढ़ सकते हैं और बाद में वो शुद्ध भक्त बनते हैं। तो इस तरह से ये आत्मा का ज्ञान है जो भागवतम में बहुत ही अच्छी तरह समझाया गया है कि क्या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वृत्तांत का अर्थ ये नहीं है कि हमें अपने जो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं करनी है। जैसे घर है, घर की मरम्मत करना है, घर में पानी आ रहा है, लाइट आ रहा है, ये देखना है, लेकिन पानी या लाइट आना मरम्मत करना उद्देश्य नहीं है, है ना। तो उसी तरह जो पारिवारिक जिम्मेदारियां उसको पूरा करना है, लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है इस यात्रा से निकलकर अपने घर वापस लौटना और बाकी लोगों को भी अपने वापस घर ले जाना, तो वो वास्तविक मनुष्य जीवन की जिम्मेदारी है। फिर जैसे इसमें श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, जैसे हमने बात किया था स्मार्ट सिटी के बारे में, तो भगवान ने भी स्मार्ट सिटी बनाई है जिसमें 9 गेट है, है ना। ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई, तो उस स्मार्ट सिटी के बारे में भी भागवतम में बहुत ही विस्तार से चतुर्थ स्कंद में बताया गया है, तो वो हम कुछ पढ़ते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, है ना। एक पुरंजन राजा था बहुत इतिहास में, और बहुत ही फेमस राजा था वो, उसका बहुत बड़ा राज्य था, और उसका एक मित्र था जिसका नाम है अज्ञात। उस मित्र का नाम था अज्ञात। तो पुरंजन राजा अपने मित्र अज्ञात के साथ हर जगह घूम रहा है कि राज्य में मुझे कौन सी सबसे बढ़िया जगह मिल जाए जहां पर मैं सुखपूर्वक रह सकूं। लेकिन उसका जो मित्र है अज्ञात, उसकी बात पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसके साथ में चल रहा है मित्र, लेकिन उसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। तो पुरंजन राजा जो है पूरे संसार में घूमता है, बहुत कड़ी दौड़ धूप करता है, और उसको ऐसा कहीं भी स्थान नहीं मिलता है जहां पर वो सुखी पूर्वक रह सके। फिर भ्रमण करते करते वो आता है हिमालय पर्वत के दक्षिण में, घूम रहा है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में आता है। वहां देखता है कि वहां पर बहुत बढ़िया सिटी है, बहुत बड़ा अच्छा शहर है, इसमें चारों तरफ से दरवाजे लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले जो राजा होते थे तो शहर के चारों तरफ दरवाजे बनवाते थे, जैसे दिल्ली में कश्मीरी गेट है ना, लाहौर गेट है, तो वो गेट क्या होते थे, गेट के चारों तरफ दीवार होती थी और जो एंट्री होती थी वो गेट के थ्रू होती थी। अगर कोई सेना है या राजा है या सैनिक है, उनको आना जाना है तो किससे आएंगे, वो गेट के द्वारा आएंगे, क्योंकि चारों तरफ क्या होती थी, दीवार होती थी। तो वो पुरंजन राजा जो है अपने मित्र के साथ हिमालय के दक्षिण में पहुंचता है उस सिटी के अंदर, और फिर उस सिटी का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि उस सिटी में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है उस सिटी में। उस सिटी में क्या है, उद्यान है, बहुत सुंदर सुंदर उद्यान है, और उस सिटी के अंदर छोटे छोटे घर हैं जिसमें खिड़कियां हैं, बहुत सुंदर झरोके हैं, है ना, और मीनारे हैं, है ना, सोने की मीनारे बनी हुई है, और सोना चांदी और लोहे के गुम्बद हैं, बड़े बड़े गुम्बद हैं। फिर वो पहुंचता है कि जिस घर में पहुंचता है उस घर की जो फर्श, उस किसका बना होता है, स्फटिक, हीरा, मोती, पन्ना, तो इन सब का वो घर बना हुआ है, है ना, बहुत सुंदर घर है। घर के पूरा शहर ही बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो घर है वो ही बहुत सुंदर बना हुआ है। फिर वो घर के बाहर वापस दूसरी जगह जाता है, वहां देखता है कि चौराहे हैं, चौराहे के ऊपर इत्र डला हुआ है और घरों में झंडे लगे हुए हैं, है ना, सब उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। फिर शहर के बाहर एक सुंदर झरना है, है ना, लोग जैसे बाहर घूमने जाते हैं तो एक झरना है, वहां पर झील है और उससे फुब्बारा, है ना, बहुत अच्छा खुशबूदार सुगंध आ रही है, तो वहां पर वो चला जाता है और कोयल, कोयल की आवाज सुनाई दे रही है, तो पूरी तरह से वो उस शहर के अंदर मोहित हो चुका है, है ना। फिर क्या होता है कि वहां पर जब पुरंजन घूम रहा है अपने मित्र के साथ में, तो वहां पर एक सुंदर स्त्री आती है, उसके 10 नौकर थे और हर नौकर की कई पत्नियां थी, है ना। जो स्त्री उसके आती है, पुरंजन देखता है उस स्त्री को, तो उस स्त्री के कितने हैं, 10 नौकर हैं और हर नौकर की कई पत्नियां। तो इस तरह से पुरंजन जब देखता है तो बहुत ही वो स्त्री से क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। फिर वो जो स्त्री है उसकी सुरक्षा करने के लिए 5 मुख वाला एक सर्प है, 5 मुख वाला एक सर्प है, वो स्त्री की सुरक्षा कर रहा है ना। तो और भी इसमें नगर का वर्णन है, और जो जो स्त्री को देखता है उसका पूरे सुंदरता का वर्णन है। फिर हम थोड़ी देर में आएंगे वो 9 द्वार क्या है। तो वास्तव में ये स्टोरी कौन सुना रहे हैं, नारद मुनि सुना रहे हैं प्राचीन वरिष्ठ राजा को। एक जो प्राचीन वरिष्ठ राजा है वो पूरी तरह से कर्म कांड में डूबा हुआ है और पशुओं की हत्या कर रहा है। तो अभी नारद मुनि ने समझाने का समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो जिसकी चेतना अशुद्ध होती है उसको क्या होता है, थोड़ा सा घुमा के समझाना पड़ता है, थोड़ा स्टोरी के माध्यम से सुनाना पड़ता है। नारद मुनि ने कई लोगों को समझाया, एक बार समझाया बात खत्म। दक्ष प्रजापति हैं, उनके पुत्र थे, नारद मुनि ने एक प्रवचन दिया और सब लोग पूरी तरह से भक्ति में आ गए। लेकिन जो प्राचीन वर्षित राजा है उसमें इतने पाप भरे हुए हैं उसकी वजह से वो समझने में उसको मुश्किल हो रही है। तो जो पुरंजन है वो कौन है? वो हम सब हैं पुरंजन। पुरजन, वन हु इंजॉयस, जो भोग करना चाहता है वो पुरंजन है। तो हम सब क्या है? पुरंजन है। और अज्ञात मित्र कौन है हमारे साथ में, जो हमेशा हमारे साथ घूम रहा है लेकिन उसकी हम बात सुनी नहीं रहे? कौन है वो मित्र? परमात्मा। सुहृदम सर्वभूताना। तो हम जिस भी योनि में जा रहे हैं परमात्मा हमारे साथ जा रहे हैं। वो पुरंजन के साथ उनका मित्र है, वो हर योनि में जा रहा है, लेकिन हम वो परमात्मा देख रहे हैं कि किस योनि में या किस जन्म में ये मेरी तरफ देखेगा और मेरी बात सुनेगा। लेकिन भगवान ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, परमात्मा रूप में कभी भगवान ने साथ नहीं छोड़ा। तो वो अज्ञात मित्र की तरह हमेशा हमारे साथ घूम रहे हैं। फिर तो जिस तरह से जीव जो पुरंजन है, जब उसने सारे राज्यों में घूमा, उसको कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर वो पूर्ण पूरी तरह से सुखी रह सके, उसी तरह से जो जीव है पुरंजन जो है, बहुत सारी अलग अलग योनियों में घूमता है लेकिन कहीं भी उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जिनसे वो संतुष्टि ढूंढने का प्रयास कर रहा है वो अपने आप में अनित्य है और जो जीव है वो नित्य है। तो एक नित्य जीव को केवल नित्य चीजें ही आनंद प्राप्त प्रदान कर सकती है, नित्य जीव को अनित्य चीजें आनंद प्रदान नहीं कर सकती। तो इस तरह से वो पुरंजन निराश है। फिर जो ये नगर है वो नगर क्या है? जिस नगर में वो पुरंजन प्रवेश करता है वो क्या है? हमारा शरीर है, है ना? तो जैसे नगर में दीवारें होती हैं तो हमारे शरीर में भी दीवार है। क्या है दीवार हमारी? त्वचा। त्वचा क्या है? ये दीवार है, है ना? फिर उद्यान, वो पुरंजन क्या है? अलग अलग उद्यानों में जाता है। तो शरीर के ऊपर जो रूम है, है ना, जो बाल है वो क्या है? उनकी उपमा किससे कर रहे हैं? उद्यान से। फिर जो मीनार, बड़ी बड़ी मीनारें हैं जैसे कुतुब मीनार, बहुत बड़ी मीनार है। मीनार क्या है? हमारी नाक। जो शरीर के उभरे हुए भाग है, मस्तक नाक, वो सब क्या है? मीनार, है ना? फिर जो झुरियां हैं, है ना, झुरियां इस शरीर के जो दबे हुए भाग हैं वो सब क्या है? नहरें हैं। जैसे एक राज्य में अलग अलग नहरें होती हैं, उसी तरह इस शरीर में भी अलग अलग क्या है? ऐसे गड्ढे हैं, आंख के नीचे गड्ढे हैं, तो वो क्या है? नहरें। जैसे आंखें क्या है? जो खिड़कियां हैं, जो शहर में खिड़कियां होती हैं, लोग खिड़की से देखते हैं, तो जी आंखें क्या है? वो खिड़कियां हैं, है ना? और खिड़कियों को बंद करने के लिए दरवाजे हैं। तो ये पलक क्या है? आंखों को बंद करने के लिए क्या है? खिड़की के दरवाजे हैं। तो पूरा ये इससे अच्छा शहर कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर इस शहर को अच्छी तरह से हमने जान लिया, उस फिर शहर से हमको निकलने की इच्छा होगी, क्योंकि हम शहर से अलग हैं। फिर ये जो पूरा शरीर है वो क्या, किसका बना हुआ? एक थैला है, इसमें क्या भरा हुआ है? कफ पित्त वायु, एक थैला है बस, है ना? कफ मल मूत्र मज्जा हड्डी, वो सब, ये सब उसका एक थैला है, है ना? और जो प्रकृति के तीन गुण है, जब हमने देखा था गुम्बद, शहर में तीन गुम्बद है, सोने का गुम्बद, चांदी का गुम्बद और लोहे का गुम्बद, तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इसके प्रभाव से वो जो पुरंजन है उस शहर में पूरी तरह से फंस चुका है। फिर जैसे हर राज्य की कैपिटल होती है, एक राजधानी होती है, तो उसी तरह ये जो पूरा शहर है, पूरा राज्य है, उसकी कैपिटल कौन है? हमारा हृदय। कैपिटल में क्या होता है, राजधानी में क्या होता है? योजनाएं बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह की योजनाएं कि कैसे शहर में विकास करना है, शहर में क्या टूटी मरम्मत करना है। तो ये सब योजनाएं कहाँ होती हैं? राजधानी में होती है। तो जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं उसकी तुलना किससे की गई है? हमने देखा था कि जो घर का जो फर्श है वो किससे बना हुआ है? हीरे मोती स्फटिक मणियां। तो ये जो लुहावने वाले बहुत सारी जो आभूषण है, है ना, लुहावते हैं, है ना, जो चमकते हैं वो बहुत, तो वो कैसे हमारी इच्छाएं हैं, जो अलग अलग तरह की हमारी जो हृदय में इच्छाएं हैं वो सब क्या है, अलग अलग आभूषण के समान या अलग अलग मणियों के समान। तो बहुत ही ये सुंदर वर्णन है और काफी विस्तार से है कि हमारे अंदर जो पूरे शरीर में 10 प्रकार की वायु है वो अलग अलग वायु अलग अलग जगह मिल रही है, तो वो क्या है, चौराहे हैं, है ना, अलग अलग अपान वायु, प्राण वायु, तो जब मिलती है एक दूसरे से तो सब क्या है, चौराहे। हमारे जो हाथ है और पैर है वो क्या है, झंडे हैं। शहर में बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं, वो हमारे हाथ और पैर। तो इस तरह से जो पुरंजन है वो हर जगह घूम रहा है। फिर जो स्त्री है जो पुरंजन को मिली वहां पर उस नगर में, तो वो स्त्री क्या है, बुद्धि है, है ना, जो बुद्धि है वो स्त्री, स्त्री वो इस स्त्री के 10 क्या है, सेवक हैं। तो 10 हमारी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और उस 5 सेवक के, एक सेवक की कई पत्नियां हैं, तो एक इंद्रिय की बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो जो जीव पुरंजन है, जिसकी जो दूषित बुद्धि है, पत्नी के संपर्क में आकर, और फिर वो जो उसके सेवक हैं 10 इंद्रियों के संपर्क में आकर, इस पूरा जो नगर है इसमें वो भ्रमण कर रहा है और उसमें क्या है, भोग करना चाह रहा है, यही चल रहा है। और कुछ इसको अगर हम फिलोसफी के लिए देखें तो यही चल रहा है, है ना, हमारी बुद्धि, बुद्धि के सेवक और सेवक की अलग अलग पत्नियां, तो ये जब पुरंजन इनसे मिलता है तो भोग करना चालू कर देता है। फिर आगे बताते हैं, अभी जो पुरंजन है वो इस स्त्री के साथ घर में प्रवेश करता है, नगर में प्रवेश करता है, और उस नगर के कितने हैं, जो प्रभुपाद आज के तात्व में बता रहे हैं, 9 द्वार हैं, है ना। तो ऐसे जो पुराने शहर हैं उसमें बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते हैं, है ना, एंट्री के लिए, तो ऐसे हमारे शरीर में क्या है, 9 द्वार हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि 7 द्वार जो हैं वो पृथ्वी से ऊपर हैं और 7 द्वार क्या है, पृथ्वी के नीचे हैं, है ना। 7 द्वार हमारे स्मार्ट सिटी के, 7 द्वार शरीर पृथ्वी के ऊपर हैं और 2 नीचे हैं। कौन कौन से हैं, अभी आते हैं। तो अभी 9 द्वारों में, ये थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन अगर घर जाके आप इसको पढ़ेंगे तो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। तो 5 द्वार जो है वो पूर्व दिशा में है, 5 द्वार जो है पूर्व में है, 1 द्वार दक्षिण में है, 1 द्वार उत्तर में है और 2 द्वार पश्चिम में है। ऐसे 9 द्वार हैं हमारे शहर के अंदर। तो कौन से द्वार जो है पूर्व दिशा में है, 5 द्वार, कौन से 5 द्वार पूर्व दिशा, पूर्व मतलब सामने, 2 आंखें, 2 नथुने और 1 मुख। तो ये जो 5 द्वार है वो पूर्व दिशा में है और 1 उत्तर में है, 1 दक्षिण में है, तो वो कौन है, 1 कान दूसरे में, और पश्चिम में जननेंद्रिया और उपस्थ। तो ये ऐसे 9 द्वार का शहर बन गया। फिर अभी जो पुरंजन है, राजा है, राजा मतलब जीव, अलग अलग द्वार से अलग अलग तरह का भोग करना चाह रहा है, है ना। अलग अलग द्वार से हम जीव से कुछ चखना चाहते हैं, नाक से अच्छा सूंघना चाहते हैं, आंख से अच्छा देखना चाहते हैं, तो ये अलग अलग द्वार से अलग अलग तरह का भोग करना उसने, पुरंजन ने चालू कर दिया। तो इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं कि पूर्व में जो द्वार है, आंखें, उसका नाम बताया गया है खद्योता और आविर्मुखी, 2 द्वार हैं, खद्योता और आविर्मुखी, है ना। और राजा जो पुरंजन है, या हम स्वयं जो हैं, उसका एक मित्र है जिसका नाम है द्युमान, उसके साथ वो एक नगरी में प्रवेश कर रहा है ना। 2 द्वार हैं, खद्योता आविर्मुखी, मित्र है द्युमान, और उसके साथ पुरंजन एक नगरी में प्रवेश किया, उस नगर का भी नाम है, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे अभी। तो ये जो दो आंखें हैं, इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो बाई आंख होती है उसकी दृष्टि थोड़ी सी कम होती है, और जो राइट, जो दाई होती है उसकी दृष्टि तेज होती है। और ये जो राजा है पुरंजन, वो अपने मित्र द्युमान की मदद से ही उस नगर में जा सकता है। ये द्युमान कौन है? सूर्य। तो सूर्य की उपस्थिति हो है तभी हम कुछ देख सकते हैं। तो जो राजा पुरंजन है या जीव है, अपने भोग के लिए भी दूसरों पर निर्भर है, और स्वयं भोग नहीं कर सकता। अगर वो कुछ देखना चाहता है, सुंदर रूप या सुंदर कुछ प्रकृति देखना चाहता है, लेकिन अगर उसका मित्र सूर्य द्युमान उसके साथ में नहीं है तो वो देख भी नहीं पाए। तो हम अपने भोग के लिए भगवान की प्रकृति है उसके ऊपर निर्भर है ना। तो इस तरह से वो देखना चालू करता है। फिर दो द्वार है पूर्व दिशा में, जिसका नाम है नलिनी और नालिनी, नलिनी नालिनी। तो ये दो द्वार कौन से हैं? दो नाक, दो नाक है नलिनी और नालिनी। और इस द्वार में से कहां जाता है? वो सौरम नगर में जाता है। सौरम, सौरम मतलब सुगंध, ऐसा नगर सौरम नगर में जाता है। और उस समय उसका मित्र कौन होता है? अवधूत। तो अवधूत की जो तुलना की गई है हवा, अगर हवा नहीं है तो हम कोई चीज को सूंघ भी नहीं सकते, करेक्ट। अगर आपको सुगंध लेना है, अगर हवा उपस्थित, पूरा वैक्यूम है, निर्वात है, वैक्यूम पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन अगर हवा नहीं है तो हम सूंघ नहीं सकते, है ना। तो पुरंजन जो है वो इन दो द्वारों से जो सूंघना चाह रहा है, वो किससे? अपने जो मित्र है अवधूत, उसकी मदद से वो सूंघना प्रारंभ करता है, है ना। फिर पांचवा द्वार आता है, बहुत ही मुख्य द्वार है, जिसका नाम है मुख्या। वो कौन सा द्वार है? मुख, है ना। उस द्वार में जाने के लिए दो मित्र हैं उसके, पुरंजन के। कौन कौन से हैं? रसज्ञ और विपण। तो जीव के क्या कार हैं? दो कार होते हैं जीव के, क्या क्या होते हैं? स्वाद लेना और बोलना। तो जो रसज्ञ है, रसज्ञ से पुरंजन क्या कर रहा है? स्वाद ले रहा है। और विपण से क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। फिर वो, तो अगर हम देखें कि अगर ये एक एक इंद्री है, एक एक द्वार को अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए, आंखें, है ना, तो आंखों का, आंखों से वो कहां जा रहा था? किस नगरी में गया था? वो पिब्राज, मतलब देख रहा था। तो अगर वो देखने का कार्य है, उसका उपयोग किस में किया जाए? भगवान का सुंदर रूप देखने में, है ना, भगवान का सुंदर श्रृंगार देखने में उपयोग किया जाए। या जो नाक है उसका उपयोग किस में किया जाए? जो भगवान को अर्पित, है ना, इत्र है या पुष्प है, उनको सुगंध में किया जाए, तो वो इंद्रिय अपने आप भगवान की सेवा में लग जाए। ऐसी मुख है, तो रसज्ञ और विपण, है ना, दो उसके मित्र हैं। तो प्रसाद, केवल प्रसाद ग्रहण करने में और भगवान से ही संबंधित जो बातें हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसके बारे में बात किया जाए, तो अपने आप ही जो पुरंजन जो फंसा हुआ है इस शहर के अंदर, वो इस शहर से निकल सकता है। फिर दो कान, ये बहुत अच्छा यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दक्षिणी द्वार है, दक्षिण, है ना, तो एक द्वार किसका है? एक द्वार का नाम है पितृहू और दूसरे द्वार का नाम है देवहू। तो जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं, दीक्षा जब होती है, जैसे कुछ लोग ऐसी दीक्षा देते हैं, कान में बोलते हैं, तो किस कान में बोलते हैं? किस कान में बोला जाता है? ऐसे बता रहा है, उत्तर दिशा में, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर दिशा में। तो जो दीक्षा है जिसमें हम गुरु हैं जो मंत्र देते हैं, वो क्या है? तो जो उत्तर दिशा में कान है उसका काम क्या है? गुरु से निर्देशन लेना, और उस द्वार के माध्यम से वो वैकुंठ जा सकता है। लेकिन जो दक्षिण दिशा में कान है, उसका कार्य बताया गया है कर्म कांड के जो मंत्र है उनको सुनना, और जिसकी वजह से क्या होता है? उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, मतलब इसी 14 लोकों में वो घूमता रहता है। तो एक कान के माध्यम से वो वैकुंठ जा सकता है और दूसरे कान के माध्यम से वो इस भौतिक जगत में घूम सकता है। एक कर्म कांड के लिए उपयोग किया जाता है और एक दीक्षा या जो गुरु से निर्देशन है उसके लिए उपयोग किया जाता है। और फिर अंतिम दो द्वार है, पश्चिम दिशा में जो द्वार है उसका नाम है आसुरी, आसुरी उसका नाम है। उसका मित्र कौन है? दुर्मध, दुर्मध। और वो नगरी कौन सी जहां वो पहुंच रहा है? उसका नाम है ग्रामक। तो दुर्मध शब्द से ही समझ, मध मतलब पागलपन और दुर्मध मतलब पूरी तरह से वो पागल हो चुका है। तो जो पुरंजन पश्चिमी द्वार से जाता है तो ये बताया गया है जननेन्द्रियां। तो जब अपने मित्र दुर्मत के साथ जाता है, दुर्मत जब उसकी जो बुद्धि है ना, जो उसको बुद्धि बुद्धि उसकी पूरी तरह से रजोगुण के द्वारा आवृत हो जाती है तो सबसे ज्यादा वो उस द्वार में वहां जाता है। और प्रभुपाद बताते हैं कि अगर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जाएंगे, अगर हम बंगाल की खाड़ी से पश्चिम ऐसे भारत में जाएंगे और पश्चिमी देशों में जाएंगे तो उतना ज्यादा भौतिकतावाद बढ़ता जाएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इसी द्वार की संतुष्टि के लिए लगे हुए हैं। तो इस द्वार की अगर संतुष्टि के लिए लगे होंगे तो भौतिकतावाद का होना आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पश्चिमेर लोग सब मूढ़ अनाचार। तो पश्चिम में जो लोग हैं सब मूढ़ और अनाचार है। तो अगर आपको भौतिक प्रगति कराना है तो जो पश्चिमी द्वार है उसका लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, है ना। और फिर अंतिम द्वार है पश्चिम निश्रिति, है ना, निश्रिति जो है गुदा। तो उसमें बताना है जिसकी मृत्यु है ना, जिसने जीवन में बहुत पाप किए हैं तो उसकी जो प्राणवायु होती है, जो आत्मा है, कहाँ से जाती है? गुदा से जाती है। और जो पायस है, भगवान का भक्त है, उसकी जो सोल निकलती है वो यहाँ से, जो ब्रह्मरंध्र होता है वहां से बाहर जाती है ना। तो अगर कोई जिसको जीव की लालसा बहुत है ना, जीव की लालसा के लिए बहुत खाया जा रहा है अलग अलग तरह की चीजें खाया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये जो द्वार है उसको बहुत परेशान करेगा। तो ये इस तरह से ये जो नौ द्वारों के बीच में जो राजा पुरंजन है जीवात्मा फंसी हुई है, तो किस द्वार का कैसे भगवान की सेवा में उपयोग करना है यहाँ हमने देखा, प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं। तो हम यहाँ समाप्त करेंगे। तो जैसे ये जो श्लोक था कि वो शहर में रहते हुए भी, उस शरीर में रहते हुए भी कार्य नहीं करता, तो उसी तरह से जो जीव है या पुरंजन है, राजा है, उस शहर में रहते हुए भी उस शरीर के अंदर, उस शहर के अंदर बंधता नहीं है, वो केवल उन द्वारों का उतना ही उपयोग करता है जितना भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। किसे कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। और ये चतुर्थ स्कंद है और इसका अध्याय 25 है जिसका नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो ये जिनके पास भागवतम है वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कथा है पुरंजन की, इसमें पूरा हर चीज क्लियर हो जाएगी कि ये पूरे भौतिक जगत में चल क्या रहा है ना। तो किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? हाँ, तो जो पांच मुख वाला सर्प है जो उस स्त्री की रक्षा कर रहा है, तो उसमें बताया गया है कि पांच तरह की जो वायु होती है वो इस बुद्धि और आत्मा की तरफ पूरा आवरण बना के चलती है, उसकी रक्षा करती है। तो पांच तरह की जो वायु है हमारे शरीर में वो पांच मुख वाला सर्प है। ओके, किसे कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय।